नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये गौरवस्तुते हे कृष्ण कन्या सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते सप्तकंचन गौरवन्दे राधिकारेश्वरी आदेविका कुंभरदगदयाद्रवाचाशाकेतवीश्यामी छटाभिरवित मंदीतर जागतं जागरोति सांविदग कामपट्टं दयस्या बिंदारण्य निवासमं मुनिलसत्कामाधिमोदरं राधास्तनदनिवेशितो जलकुलं मालिन्दं वक्त्याभिनापराधलक्ष्यै चित्तास्य कामाधिकरं गमन्ते पितामहि त्वां शरणं गौरचंद्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय यं प्राप्तजन्तमन्ते समते सकृत्यं द्वैपायनो विरहता अतर्याति भाव कुते पितन्मयतया कर्मोऽतिनेदो तं सर्वभूतविदयं मुनिमान् आज चैतन्य से काम से हम रामानंद संपाद का कुछ अनुशीलन कर रहे हैं। अब हमने बताया एक उसको भगवान इसमें बताया महत्वपूर्ण श्लोक गृही मनुष्यों के घर पर और जो गृही और अत्यंत गृह में आसक्त और दीन भी है उनका निःशेष आय उनका परम मंगल साधन करने के लिए वो जाते हैं। अपना कोई भी उनका काम नहीं, तो इसके हमने दो अर्थ बतलाए थे। गृहिणाम और दीन चेत शांत पांडुबी जब बतलाओ तो क्या क्या नहीं था नहीं है तभी जाते ऐसे खड़े रहो और कल से आने नहीं देंगे यदि मन सुनता बोलेगा ही कराओ। दिन मैंने क्या होता है दिन मैंने क्या तुम देर करके क्यों आता है बोलो दिन मैंने क्या होता है दिन मैंने भी नहीं जानता क्या जानता है खड़े रहो आगे तुम बोलो तो दिन है दुखी है गृह में आसक्त है भोगों में आसक्त हैं अत्यंत अधिक वो उनके घर पर जाएंगे भी तो वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे तो संसार में सभी लोग ऐसा कोई है ही नहीं है जो दुखी नहीं जिनका पूर्व जन्म के इस जन्म के कुछ संस्कार ऐसे बने हैं जो उनकी कृपा को ग्रहण करने वाले हैं और जिनके अंदर में दीनता आई रहती है, संस्कार के वजह से दीनता। हाँ, हमारा आज अहोभाग्य है जो ऐसे एक महात्मा हमारे घर में सताए, तो वो साधु संघ से कुछ लाभ है। जिनका भक्ति का या श्रद्धा इत्यादि का संस्कार नहीं है वैष्णव, ऐसे लोगों के यहाँ ये लोग समझ रहे हैं कौन, युधिष्ठिर महाराज और नंद बाबा अपने को ये भक्तिमान होते हुए भी, दोनों भक्तिमान है, साधु संघ को समझते हैं, इसलिए साधु संघ की महिमा श्रवण करके
संसार में रहते
हुए
भी चारों प्रकार के मत से
रहते, किंतु अपने को समझते संसार में सबसे बड़ा दीन वह है जिनको साधु संग नहीं मिलता है, वो सबसे बड़ा है। इससे दीन जगत में और कोई नहीं। ये लोग ऐसा समझते हैं कि हो मैं साधु संग से वंचित हूं। एक बहुत उन्नत व्यक्ति भी यहाँ तक कि वैदिक भक्ति की तो बात क्या है, रागानुगा में भी उसका प्रवेश हो गया है और उसकी भक्ति कुछ ऊंची तक होने गई और साधु संग नहीं है तो वहां से गिर पड़ेगा। भाव अवस्था में भी पहुंच करके उपयुक्त और अनुकूल साधु संग नहीं है वहां से भी गिर पड़ेगा। इसलिए रूप सनातन इत्यादि रघुनाथ दास गोस्वामी परस्पर साधु संग करते हैं, भगवान की लीला कथाओं को ऋषभ करते हैं। इसी से क्रमशः भक्ति बढ़ती रहती है और वो प्रेमावस्था को जाएगी, अन्यथा भाव के सुख जाएगा और सुख करके नीचे निम्नगामी होकर के रसातल को चला। इसलिए साधु संग की इसलिए नंद बाबा यहाँ पर बैठी लज्जा नीचे उसने और उसको अर्थ बताया। असल में भक्ति के द्वारा जब दीनता आती है इतना कभी सुनिए इतना न भी आया उसका आभास भी निर्भर करते हैं तब वो वैष्णव की कृपा को ग्रहण कर सकते, अन्यथा दंभ पाखंड अहंकार कुछ भजन का भी अहंकार होता है भी आ जाता है। भजन करने से दीनता आएगी, क्या तुम्हारा कुछ भजन नहीं है, रूप सनातन की बातों को नहीं समझ
सकते।
एक पर्यायवाची शब्दों से अब दिनों दिन देखो दीनता सबसे अधिक किस में होगी, जिसमें भक्ति अधिक होगी उसी में दीनता होगी। राय रामानंद कह रहे हैं कि मैं अस्पृश्य हूं, आपने हमें स्पर्श किया, और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं दीन हूं, मैंने तुम्हारा स्पर्श किया अपने कल्याण, दोनों तीन दिन और दोनों साधम भट्टाचार्य को कह रहे हैं अपने भाषी के निमित्त। साधम भट्टाचार्य जी ने हमको आपके पास में भेजा हमारे कल्याण के लिए, जाओ उनके पास में, उनके दर्शन से उनकी हरि कथा सुन करके आप समझें यहाँ कोई किसी कोई मिला था। और ये कह रहे हैं जिससे हमारे ऊपर में साधम भट्टाचार्य जी ने आपको भेज करके हमारा कल्याण, वो कहते हैं मेरा था दोनों तीन दिन बंद। अच्छा, यदि दीनता स्वाभाविक है, भक्ति का गुण है, तो जिसमें सबसे अधिक भक्ति होगी उसमें दीनता भी सबसे अधिक होगी। तो राय रामानंद ने और महाप्रभु जी में भक्ति किसमें अधिक है, दोनों आदमी दीनता है, धन्य है, दोनों में लड़ा
नहीं,
दोनों में ये विचार किया गया है
महाप्रभु तो अभी बताया ना ये सब भक्ति के रस के सागर है और उन्होंने अपनी कुछ कृपा संचरित की, पर वो भक्ति रूपी मेघ से वो बातें आए तब महाप्रभु जी रखना चाहिए। तब इसके द्वारा तो मालूम होता है जो भक्ति का स्थान
आश्रय जाति में
आश्रय जाति वो महाप्रभु जी रस के समुद्र हैं, भक्ति के समुद्र, तो इनमें भिन्नता हुई। और जब दूसरी तरफ से विचार करते हैं रामानंद में जो चीज है आश्रय जाति विभाग, तो जिसको सीखने के लिए महाप्रभु के पास में आए वो चीज नहीं, तो ये इस जाति की भक्ति भक्ति भगवान की भक्ति को भक्ति नहीं करते, तो भक्ति का रस साधन करते हैं। इसलिए भक्ति कहाँ हुई आश्रय जाति जिसका भगवान आस्वादन मात्र था, इसलिए दीनता इंद्रिय में अधिक होनी चाहिए। और जब दूसरी तरफ से विचार करते हैं तो भगवान भक्ति है, भगवान जैसे देखो ये जिसने पैर मारा भृगु, भृगु के सनत सनंदन सनत कुमार के चरण वंदन करते हैं, सबके ये मूल है अवतारों के, और वे सनत सनंत कुमार के चरणों की वंदना करते हैं, ये है दीन प्रभु। और रामानंद यहाँ भक्तों में खुला नहीं है, विशाखा जी इन्हें आश्रय जाति भक्ति अत्यंत अधिक, इसलिए तुमने दीनता ली। दोनों में दीनता दो प्रकार की, उनका आश्रय जाति इनका विषय जाति दोनों का। इसमें जब हम विचार करेंगे अपनी दृष्टि से आश्रय जाति के दृष्टि से हम विचार करेंगे तो वहां पर देखेंगे रामानंद जी की जो दीनता है। महाप्रभु कह रहे हैं जब साधना भट्टाचार्य ने हमको भेजा और मैं आपके पास आया और ये जो ब्राह्मण इत्यादि हैं जितने लोग ये आपकी आप महा महाभागवत उत्तम है आपको देखने से ही इनको एक प्रेम आया। और रामानंद कहते हैं कि आप भगवान हैं इसलिए आपके दूरदृष्टि से ही इनमें प्रेम आया। तो अब दोनों में युक्ति संगत कौन सी चीज देखती है, रामानंद की बात या महाप्रभु की? जब हम विचार करते हैं ना तो हम उनके प्रति एक पक्ष हो जाता है रामानंद के, हम कहते हैं कि रामानंद जो कहते हैं वही बात है।
तो
हम देख करके क्या कहेंगे सचमुच में ये और जगत ही लिखा है महाप्रभु जी का दर्शन से ही बनने हो जाता है। ये बात तो ठीक लगती है रामानंद की, इसलिए ब्राह्मणों की जो प्रेम की भक्ति हुई वो किसको देख करके हुई? अरे रामानंद को तो रोज ही देखते हैं तो वो गदगद क्यों नहीं होते, और आज जो गदगद हुए देख करके किसका हरि बोल सुन करके?
दोनों का व्यवहार देख कर,
महाप्रभु जी का प्रति देख कर,
करुणा की मूर्ति।
क्यों रामानंद की दीनता को वो नहीं देख रहे? महाप्रभु जी की जो दीनता है वो ऐश्वर्य मिश्रित है और ये लोग हैं वैसे ना, इसलिए उनको तो दिखाई पड़ जाए। अब माधुर्य वाली जो दीनता है रामानंद में है वो नहीं दिखाई पड़े। जब ये सब विशेष रूप में सब विचार करते हैं तब ये सब आते हैं। थोड़ी देर के बाद में ब्राह्मण आया, एक उनकी बातें चल रही थी, ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया, महाप्रभु जी ने उसको स्वीकार कर दिया। महाप्रभु जब जाने लगे तो रामानंद उनको दंड, महाप्रभु जी ने कहा तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनते हय मन पुनरपि पाई जेनो तुम्हार कथा, तुम्हारे मुख से कुछ हरि कथा सुनने की लालसा हो रही है, क्योंकि सार्वभौम ने बतलाया है आप हरि कथा के आगार हैं, समुद्र हैं, मैं आपसे कुछ सुनना है। तो वो तो नहीं कहा किंतु ये संक्षेप में ये कहा मैं आपके मुख से कुछ हरि कथा सुनना चाहता हूं। महाप्रभु जैसे लोग स्वयं भगवान। अच्छा ये जो सुनना चाहते हैं ये चतुराई करके कह रहे हैं न वो स्वाभाविक रूप से सत्य कह रहे हैं
स्वाभाविक।
प्रभु भक्तों के मुख से अपने लीला चरित्रों को सुनने में इतना आनंद होता है जो उसमें रम जाते हैं। इसीलिए हराज के समय में अंतर ध्यान होने हुए थे इसीलिए कि गोपियों के मुख से ऐसी ऐसी सब बातें सुने। कुछ वो दुख मिश्रित होकर के कुछ क्रोध मिश्रित होकर के कुछ गालियां झुककर कुछ सीधी शादी कुछ उल्टी सीधी ये सब प्रकार की मिश्रित ये सब सुने जो और कहीं नहीं सुनते और उन्होंने सुना भी वैसे। इसीलिए कहते हैं कि गोपियों की भी बातों को सुनकर के भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वेदों के ब्रह्मा इत्यादि के स्तुतियों के तव इत्यादि के द्वारा जो प्रसन्न नहीं होते उसके द्वारा वो प्रसन्न हुए। इसलिए स्वाभाविक रूप में ही चैतन्य महाप्रभु राय जी कह रहे हैं राय यहाँ तक कि कोई निसिंहानंद जी ब्रह्मचारी थे उन्होंने कहा जब मैं आपसे कुछ हरि कथा सुनना चाहता हूँ ये हरि कथा सुनना चाहता है तो जाओ राय रामानंद के पास में सुनो जिससे मैंने हरि कथा सुनी है उसके पास में जाओ। सर्वदीप वो चला गया वो जा करके देखा तो वो स्त्रियों की सेवा में लगे हुए थे ज्योति लड़कियों की सेवा देवदासियों की तो उनको विरक्ति ये क्या साधु संत गृही और स्त्रियों की सेवा में लगा हुआ है चले अरे हरि कथा सुन लिया बजे सुना तो सुना नहीं तो लौट आए तो कुछ बोले नहीं मौन ठीक फिर जाओ जाकर के फिर सुन फिर गए। इस बार उन्होंने आदि कैसे आए आपके दर्शनों के लिए कुछ हरि कथा सुनने क्या सुनना चाहते हो मैंने कहा जो आपने कुछ महाप्रभु जी को सुना इसलिए भगवान भी कहते हैं कि जाओ भक्तों के निकट मैं उतनी अच्छी तरह से हरि कथा नहीं बोल सकता हूँ जो कि भक्त लोग बोल सकते हैं वो प्रेम में पले हुए होते हैं और हमारे लीला चरित्र को अच्छी तरह से बोलते हैं मैं अपनी लीला कथाओं को मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए श्री राय जी इसका उत्तर देते हैं आइला राय कहे आइला जदि पामर सोधी के दर्शन मात्र शुद्ध न है मोर दुष्ट चित्त। आप आए ये बात तो ठीक है और दर्शन से हमें शोधन कुछ किया दर्शन से शोधन किया लोगों के अंदर में कामनाएं वासनाएं इत्यादि तरह तरह की चीजें होती हैं सबसे बड़ी दूरी है वासना। कर्मों के फल भोगने से भी प्रायश्चित करने से भी वासना नहीं जाती आग लगा देने से बांस जल जाएगा किंतु नीचे की जो जड़ें हैं वो नहीं जड़ती जलती फिर वर्षा होने पर फिर से वो वास आ जाता है। दूध की घास का भी ऐसे है दूध की घास सूख जाएगी ऊपर से जंगल में कहीं नहीं घास सब सूख रही और जहां पानी पड़ा ऊंचे से तिरंकित हो जाए ऐसे ही ऊपर से कुछ प्रायश्चित हो गया ये सब हो गया किंतु वासना कर्मों की जो है वो नहीं जाती संतों के संग से वासना किंतु एक दिन में नहीं जाएगी धीरे 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 तो वही कह रहे हैं दर्शन मैंने आपका किया किंतु हमारा दुष्ट मन बहुत अधिक मलिन हो गया है आपके एक दिन के दर्शन से नहीं होगा बार बार दर्शन करने से हरि कथा सुनने से ही होगा। साधु संग में यदि हम जाते हैं साधु कोई यदि वो शुद्ध कोटि के साधु हो साधक हो भागवत हो तो कोई कथा न बोले भी तभी उनके पास में जाने से ही अपने आप पवित्रता आ जाती है। जैसे सुना है अगस्त ऋषि के आश्रम में कोई भी जाता था हिंसक प्राणी में वो अहिंसक हो जाता संतों के पास में जाने से चित्त अपने आप निर्मल हो जाता है, उनके हृदय से ऐसी किरणें निकलती हैं सत्य की, जन भक्ति की किरणें निकलती हैं, जो कि लोगों के चित्तों को प्रभावित कर सकते। किरासन का तेल जहाँ रहता है उससे भी यदि गंध निकल करके दूसरों के वो दुर्गंध बना देता है तो क्यों नहीं शादी लोग किन में वस्तु भक्ति भी तुमने उनका संग करने से क्यों नहीं फल होगा, निश्चित रूप में फल होगा, ऐसा साधु संघ का फल है। तो वो कारण किंतु धीरे धीरे होगा। कहते गंगा के दर्शन से स्नान से चित्त पवित्र होता है, ये बात तो ठीक है, किंतु एक बार करने से नहीं होता, पुनः 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 सेवन करने से तब हो सकता है। एक महीना रहिए भोगों को छोड़ कर शीतकाल में माघ के महीने में प्रयाग में रहिए, रोज रोज स्नान कुछ चित्त पवित्र हो सकता है। साधुओं के दर्शन से अपने आप उसी समय में हो जाता है जब भी साधु वैसे है।
गंगा के स्नान से वासना समाप्त हो
जाए, क्योंकि प्राप्ति होने का उल्लेख है, तो वासना प्राप्त गुरु के बिना कैसे चला जाएगा।
साधु संघ में तो न काम करना भेजा हम जैसे
चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये शकर के इतने पुत्र थे जो मर गए थे, उनकी वासना तो थी, तो गंगा के स्पर्श से वो स्वर्ग वैकुंठ चले गए, तो कैसे चले गए, वासना को भी दूर कर सकती है गंगा, क्योंकि भगवती ने भगवत संबंधी है, भगवान की शक्ति है।
गंगा स्पर्श होने पर होगा और दूसरे दर्शन से होगा,
तो साधु लोग उससे भी अधिक है, किंतु साधु साधु होना चाहिए भाई, नामधारी ये सब नहीं। जैसे प्रयाग में जो ये होता है ना स्नान कुंभ का, 1,00,000 नागा तलवार खाते हुए फरसा उठाए हुए बीड़ी सिगरेट सूखा चलाते हुए चलते हैं, हाथियों पर घोड़ों पर ऐसे ही चलते हैं, और कोई मिल गया ना और उनके रास्ते में बाधा दिया तो बस पीट पाट करके बाहर कर दो, इसलिए डोर का दरवाजा लोग बंद कर देते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं, और जहाँ घाट पर स्नान कर घाट पर कोई जाएगा नहीं, स्नान करके जब चले जाएंगे ये लोग साधु हैं कि नहीं, साधुता से कोई भी संबंध नहीं। इनका संग करने से वैसे ही गजड़ी फलगड़ी बदमाश लोफर और अहंकारी बन जाएंगे, इसलिए ये सब साधु चित्त जिनका निर्मल है, भगवान में जिनका चित्त है, ऐसे लोगों का संग होने से तो उन्होंने वो कह रहे हैं 10-5 दिन यहाँ पर रहिए, 5-7 दिन 5-7 कभी करो मार्जन तबे शुद्ध है मोद एक दुष्ट मान, तब हमारा मन दुष्ट होगा। साधु संघ में भी जिनके मन के ऊपर में अधिक कामनाएं वासनाएं और कामनाएं हैं वो 2-1 दिन में साधु संघ से नहीं होगा, एक तो साधुओं की बातों को ग्रहण नहीं कर सकेगा, साधु संघ में रहते हुए धीरे धीरे कुछ दिन रहते रहते 2-4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष रहे और सचमुच में हृदय निर्मल करके उनकी बातों को ग्रहण करने की चेष्टा करें और आचरण में उनकी बातों को लाए, तब साधु संग यदि ठीक से होना 1 मिनट में भी उसका चेंज हो सकता है, ऐसे भी उसके उदाहरण। इसलिए कहते हैं यहाँ तक कि उसकी नहीं प्रहलाद महाराज के उपाख्यान में या सो पता है जात खान मनुष्य की तो बात क्या, ये सब जितने भी असुर नाग किन्नर देवता यक्ष असुर मनुष्य पशु पक्षी की पतंग ये महाराज दशरथ की कृपा हो गई तो जटायु जी हनुमान जी का संग है करो, विभीषण सुग्रीव ये सभी उत्पन्न हुआ, प्रहलाद महाराज जी का संग हुआ तो प्रहलाद असुरों के जितने देव जितने बालक थे वो सब लोग इसी तरह से। इसलिए साधु संग में चित्त स्थिर करके रहना चाहिए और कुछ यदि नाकृति करे स्वतंत्र प्रसन्न नाम भवित्य संविधान भवन करित कर्ण रसायन तथा तज्जो सनात आशु अकबर वर्तमनी सदा भक्ति। बस उनके संग में रहे और कथाओं को सुनते रहे, अपने आप जो कुछ करना होगा वो हरि कथा करा दें, क्रमशः उसमें साधन भक्ति, भाव भक्ति और अंत में किसी भी स्थिति में साधु संग छोड़ा न जाए, ये हमारे ऊपर में निर्भर है। देखो जो उसका फल जरूर होगा,
यद्यपि विच्छेद विच्छेद तुम्हार सहन न जाए
तथापि दंड तक अभी चली जा रहा है, यद्यपि दोनों को दोनों नहीं छोड़ना चाहते, न रायरमन में छोड़ बना चाहते हैं और न महाप्रभु उनको छोड़ना चाहते हैं। भला विशाखा का संग आज बहुत दिनों के बाद में हुआ, उसको कृष्ण कैसे छोड़े न? और उधर कृष्ण का संग हुआ है बहुत दिनों के बाद में, तो विशाखा जी उनका संग कैसे छोड़े? किंतु फिर भी नरलीला है ना, नरलीला का अनुरूप छोड़ना, इसलिए दोनों नहीं छोड़ने से भी तथापि राय रामानंद जी ने उनको दंडवत किया। दंडवत किया सन्यासी के लिए, नहीं तो राय रामानंद का उम्र बहुत अधिक है, किंतु वर्ण और आश्रम की दृष्टि से महाप्रभु जी सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं और वो राजा हैं, विषयी हैं और शूद्र जाति, इसलिए उनको प्रणाम किया। किंतु भक्त लोग ऐसा विचार कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। हम लोग का जहाँ पर राय रामानंद जी और वो खड़े हो ना, तो हम तो पहले राय रामानंद जी को प्रणाम करें, तब कृष्ण को प्रणाम करें, ऐसा ही होना चाहिए। प्रभु जाय से विप्र भरे भिक्षा कर, विप्र के घर में भिक्षा, किंतु सोच क्या रहे हैं, दूजना उत्कंठा आशीष संख्या हो गया, वो घर गए राजकार्य में राजभवन में और ये आए ब्राह्मण के घर में और विश्राम करने लगे, किंतु समय घंटा क्या उत्कंठा हो रही, कब मिले कब 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 समझा, अब दिन बीती नहीं रहा, बीती नहीं रहा, कब वो संध्या होगी और कब वो आएंगे और फिर हरि कथा होगी, और राय रामानंद से कब संध्या हो तो मैं वहां जाऊं और हरि कथा हो दूं उसे मिलन हो, ऐसे ही उत्कंठा, कब संध्या हो, कब 6 बजे और हम लोग कथा सुनने के लिए जाए, अच्छी अच्छी कथा। तो ऐसे ही इनके हृदय में दोनों उत्कंठा, भक्ति के लिए हरि कथा के लिए उत्कंठा होनी चाहिए, तब ये हरि कथा ही भक्ति है। हरि कथा क्या है, भक्ति को उत्पन्न करती है ना, भक्ति है
स्वरूप सिद्धा,
यही स्वरूप सिद्धा भक्ति। जिनको हरि कथा सुनने से भक्ति होगी उनकी भक्ति अभी स्वरूप सिद्धा नहीं है, वो भक्ति का मर्म नहीं जानते। जिन्होंने हरि कथा को ही भक्ति मान लिया वही विचार थी, ये हरि कथा श्रवण यही भक्ति, और किसी के लिए ये भी साधन है, जिसको रुचि इत्यादि नहीं है, जिनकी रुचि उत्पन्न हो गई है उन लोगों के लिए भी साधन, वो और 1000 साधन छोड़ करके हरिनाम करना छोड़ करके भी हरि कथा में आएंगे। क्यों, हमारा नाम जो है अभी नाम हो रहा है कि नहीं, हमारा भजन करना भजन हो रहा है कि नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है, हमारा अधिकार रहता नहीं। जो कथा सुनता हूँ वो तो हमारे अधिकार के ऊपर की बात है, इससे हमारा बहुत कुछ लाभ होगा, ऐसा समझ करके हरि कथा सुनना चाहिए। उत्कंठा दूजना उत्कंठा आशी संख्या है, इसका तात्पर्य ऐसा मालूम हो रहा है उनकी उत्कंठा देख करके ही मानो संख्या जल्दी से हो गई ना, दू जना उत्कंठा आशी संख्या हो गई समझा, किंतु उनकी उत्कंठा इतनी है कि वो सब समय चिंता कब शाम हो कब शाम हो, और करते करते जब शाम हो, महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं वो तो जल्दी से आ जाएंगे, वो तो आ गए रामानंद महाप्रभु, प्रभु स्नान कृत्य करी आखे में बस लिया बैठे में, इसलिए बैठे हैं रामानंद, स्नान या तो सवेरे की बात हो रही है नहीं,
ये संत लोग विशेष करके जो वानप्रस्थी होते हैं और सन्यासी, इन लोगों के लिए तीन बार स्नान की विधि है, चाहे शीत हो, चाहे ग्रीष्म हो, चाहे गुरु, तीन बार। तो तीन बार स्नान, तो सवेरे का स्नान तो कर लिया है, महाप्रसाद भी हो गया, इसके बाद में दो बार का भी हो गया है, अब ये तीसरे समय संध्या का समय का भी वो स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आंधी करके और तब वो बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु स्नान कृत्य करी आचिन बसिया एक नृत्य संगे राय मिली राशि। केवल एक भक्त को संग में दिया और किसी को भी नहीं दिया, भक्त को दिया। लेकर के साधारण वेश में आए, कैसे वेश, राजकीय वेश में नहीं आए, एक कपड़ा धोती पहनते हैं, धोती का एक भाग लपेट दिया एक कमर भर, और उसी को लंबी सी धोती होती है उसको ऊपर से ले लिया। साधारण रूप में ब्राह्मण लोग भी ऐसे ही करते थे, साधारण एक से ही दो काम हो गया, इसलिए लंबी धोती इसलिए होती है। और उसके साथ में प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम, शरीर खुला रहता है, सब प्रकार के कृत्य को करने में सुविधा होती है। बस उसी रूप में साधारण से साधारण वेश में एक वस्त्र में उनके पास नमस्कार कैला रहा है, प्रभु कैला अलिंग तू जने कृष्ण कथा कैसे स्थान रामानंद ने उनको प्रणाम किया। महाप्रभु ने देखा जरा रामानंद आ गए, उठ करके खड़े हो गए, अब वो झुक करके प्रणाम करेंगे दंडवत, वो जानते हैं, इसलिए उसके पहले ही झट कुछ आगे बढ़ करके उनको पकड़ और वैष्णव लोग किसी को इस प्रकार से प्रणाम नहीं करने देते। यदि बराबरी का हो या उच्च हो कोई, तो उसको सच जो उच्च व्यक्ति भी होता है, मान लें कि एक महाभाग दूसरा एक महाभाग होता है, तो दोनों का मिलन कैसे होगा, वो सख भावाश्रित कुछ होते हैं, भले ही दोनों में तारतम्य तो कुछ जरूर होगा, किंतु दोनों महाभागवत हैं, जैसे राय रामानंद और स्वरूप दामोदर दोनों मिले क्या होगा, दोनों में कौन और अधिक और बड़ा, हम लोग तो विचार नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ विचार है तारतम्य, किंतु वहां पर विचार का नहीं कर सके, दोनों जब मिलेंगे ना वो उनको प्रणाम नहीं करने देंगे, वो उसको प्रणाम दोनों आलिंगन में नमस्कार कर ली या दंडवत, बस इतना है। प्रीति के लिए हम लोगों का कभी कभी होता है बिना प्रीति के भी प्रणाम कर, दंडवत प्रभु मुख से दंडवत प्रभु, अन्यथा तो ऐसा किया सिर भी मट्टी में ठेका कि नहीं ठेका कोई भी बात नहीं, कदे क्यों आया बेटा का यही चला जाता तो अच्छा यहाँ पर खाएगा पिएगा, खंजर बढ़ा दिया कंडो को भी कह देते, ये प्रणाम का कोई मतलब नहीं। अब दोनों में कथा आरंभ हुई, हम लोग की कथा आरंभ होगी तो सबसे है, अच्छा भाई देखो आ जाओ इनको जरा पानी में खिला दो, तो भोजन करके तो आए नहीं होंगे, इनको भोजन चोजन कराओ सब, ये है भी, किंतु यहाँ पर जहाँ पर भक्ति का विचार होता है वहाँ पर पहले यही होता है, और कोई चर्चा ही नहीं हुई। महाप्रभु जी ने एकदम आरंभ कर दिया हरि कथा, उसी समय प्रभु कहे पड़ोस लोग साथ धैर्य ले रहे, राय कहे सब स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति का, खूब सावधानी से सुनेंगे विचार करेंगे और अपने जीवन में भी आचरण करेंगे तब तो ये काम नहीं, और विचार नहीं किया सुन करके बस छोड़ दिया, हम तो सुना नहीं तो बस नहीं सुना, इसका लाभ उठाओ। चैतन्य चैतामृत का एक सुनकर सबसे चिंतामणि रत्न है ये यदि कोई समझ लिया
और फिर इसकी उपलब्धि के लिए चेष्टा रही उसको विज्ञान में परिणित करने के लिए, तो बहुत सहायक होगा, बहुत सहायक होगा। इससे झट प्रेमा भक्ति का आविर्भाव होगा। तो प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साध्य, पढ़ो श्लोक साध्य, ऐसा कोई श्लोक बतलाओ जिससे साध्य का निर्णय होगा, ऐसा श्लोक बतलाओ। उन्होंने ये कहा साध्य जो वस्तु होती है जीवों के लिए ये अप्राकृत होती है। जो सबसे उन्नत साध्य है, जीव के बहुत से साध्य और साधन नहीं है, एक ही साध्य है स्वरूप, किंतु उसके ऊपर में, जीव के ऊपर में स्थूल और लिंग शरीर का आवरण होने से अभी बहुत तरह के साध्य और साधन बन गए, एक ही नहीं लाख तरह के साध्य। अब पहले सुनिए, जैसे साध्य किसको कहते हैं, साधन किसको, साध्य उसको कहते हैं जिसकी हम अभिलाषा करते हैं, और अभिलाषा करके जिसके लिए हम तरह तरह के उपाय करके जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं उसको कहते हैं साध्य। जिस चीज की हम अभिलाषा जिस वस्तु की करते हैं और उसके लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करने पर वह वस्तु जब मिलती है तो उसको कहते हैं साध्य। और उस साध्य वस्तु को पाने के लिए हम जो कुछ प्रयत्न करते हैं उसको कहते हैं साधन। ये साधारण की बात यहां पर नरारामानंद और महाप्रभु में जो विचार विनिमय हुआ है इसमें वर्णाश्रम धर्म से लेकर के अंतिम सोपान गोपी भक्ति, गोपियों की भक्ति तक जो ले गए हैं वो एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये सब अलग अलग स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि एक सीढ़ी एक सोपान बतलाया, जैसे गीता में, गीता जो है ना अलग अलग साधन नहीं है, उसमें पहले कर्म, फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये एक ही सोपान में क्रमशः नीचे से ऊपर तक श्रेणियां चली गई है, उसमें तो है, क्योंकि यहां पर किसी से किसी का अपना संबंध नहीं है, ये सभी पृथक पृथक चीजें हैं। इससे बतला करके हम समझाएंगे, सोपान नहीं है, एक क्रम से नहीं बतलाया, जैसे आदर श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, ये सब क्रम है, एक स्टेप बाय स्टेप, बिना एक के आप उल्लंघन करके नहीं जा सकते, किंतु इसमें ऐसा नहीं है, एक एक साधन एक एक साधन ना? अब जैसे हम लोग चल रहे हैं आगे, सबसे उत्तम जीव के लिए साध्य और साधन क्या है इस पर विचार करने के लिए हम चाहिए सबसे श्रेष्ठ। तो जीव का पहले स्वरूप निर्णय करें, जीव है कौन, ये शरीर जीव है ना दूसरा कुछ है। यदि शरीर जीव है तो इसके तो बहुत से साधन है, इसको खाने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है, इसको कुछ रुपए की जरूरत है, इसको कुछ सगे संबंधियों और विवाह से इत्यादि की जरूरत, बहुत तरह की इसकी जरूरत है। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ हम करेंगे वो साधन होगा, और जब वो जरूरतें पूरी हो जाएंगे तो हमारे लिए वो साध्य हो जाएगा। किंतु शरीर हम है नहीं, इसलिए शरीर का भोजन आच्छादन और शरीर का भोग यह अंतिम साधन नहीं है, साध्य नहीं है। मोक्ष को, मोक्ष भी साध्य हमारा नहीं है। जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव भगवान का अंश है। और भी समस्त शास्त्रों में यह सही बतलाया गया, जीव सेवक है और वो सेवक स्वरूप से। अब स्वरूपगत जो जीव की भगवान के प्रति सेवा है यही हमारा मूल साक्षी है। स्वरूपानुबंधी भगवान की सेवाएं ही हमारा सार्थक है। स्वरूपानुबंधी होना चाहिए। स्वरूपानुबंधी मैंने अभी हमारा जो ये रूप है ये स्वरूप नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यकताएं हैं, हमारा साध्य नहीं है। अच्छी तरह से समझ। मोक्ष इत्यादि जीव का काम में नहीं है, वो स्वरूपानुबंधी नहीं है। इसलिए जहां तक यह भाव नहीं आया तब तक महाप्रभु जी ने कहा यो बाह्य, यो बाहरी। जहां उसका कुछ भाव आया यो है, और जहां पर पूर्ण रूप से आया वहां पर कल है सर्वोत्तम। और जब उससे भी अंतिम चरण आया तो यह सर्वोत्तम में भी सर्वोत्तम। इसलिए जीव का स्वरूपानुबंधी, स्वरूप संबंधी जो अपना भाव है भगवान के प्रति, अर्थात तो भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की प्रीति विधान करना, वो जो है वही जीव का मुख्य। मोटा मोटी ये समझ लो भगवत प्रीति ही जीव का चरम साध्य। इसलिए चैतन्य चरितामृत ने कृष्ण प्रेम को बताया चरम प्रयोजन। ये चरम प्रयोजन ही जीव के लिए साध्य। अब यही चरम प्रयोजन भी प्रेम तो कह दिया एक शब्द में, किंतु पांच प्रकार के प्रेम है। उन पांचों प्रकार में से सबसे श्रेष्ठ है मधुर। और वो भी कितने प्रकार का है? बहुत प्रकार का। उसमें से तुम्हारा क्या स्वरूपगत है उस पर विचार किया। तो यहां कह रहे हैं पड़ोसु अचिंता जे खलु भावा नांसकारके न जोजे प्रकृतिभ्या परम जच्च जद अचिंतस्य लक्षणम्। संसारिक जो सुख सुविधाएं हैं साध्य और साधन, इस पर तो हम विचार कर रहे हैं। जैसे हमको रुपये की जरूरत है तो या तो वाणिज्य व्यवसाय करेंगे, नहीं कहीं नौकरी करेंगे, नहीं चोरी चमारी डकैती करेंगे, यही तो और क्या उपाय है। यदि हमें नौकरी करने की और नौकरी नहीं हो रही है वाणिज्य व्यवसाय करने की, वाणिज्य व्यवसाय भी करने के लिए पैसे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आखिर? कोई नौकरी नहीं मिली, वाणिज्य व्यवसाय भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे? और जैसे आजकल के बच्चे सब क्या करते हैं, डकैती चोरी लूट मार ये सब करते हैं। आजकल की शिक्षा भी ऐसी है, तो वो चोरी कैसे करेंगे? वैज्ञानिक पद्धति से आजकल सीख करके करते हैं, ताला को किसी चीज से छू दिया और वो खड़ के नीचे गिर गया और अपने आप खुल गया। और उसके पहले ही जंगले से कोई चीज थोड़ा सा पंप कर दिया इंजेक्शन से, और वायु वहाँ का ऐसा हो गया जो मूर्छित होकर तो सोए रह गए, और घर से सब कुछ निकाल करके वैज्ञानिक पद्धति से सब कुछ लेकर करके ये सब तो हो जाएगा। किंतु जो अप्राकृतिक चीज है प्रेम, भाई ये अपने मन से नहीं होगा, ये कभी संभव नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं अचिंता जे खलु भावा न तांस तर्के न जोजे। जो साध्य और साधन इस जगत संबंधी है वो तो हम कर लेंगे अपने विचार से और दूसरों के विचार से कर लेंगे, किंतु जो अचिंत अलौकिक है अप्राकृत जो है उसके लिए शास्त्र का प्रमाण ये चाहिए। क्यों? शास्त्र अभ्रांत हो, वो भी सब नहीं। वेद उपनिषद पुराण स्मृतियां और उनके अनुकूल जो शास्त्र होते हैं वो रामायण महाभारत और इन सब में मूल प्रमाण श्रीमद्भागवत। क्यों? ये भगवान ने अपने पाने के लिए, कृष्ण प्रेम को पाने के लिए
अपने मुख से जो उपाय बतलाए हैं उनको भागवत धर्म का भगवान के वचन में कहीं नहीं धर्म प्रमाण की प्रदीक्षा करना पाठ नहीं होता। ये कल मैंने बतलाया था इन चारों न किसी को ठगना चाहते हैं वो स्वाभाविक रूप से सबका कल्याण चाहते हैं। उनकी इंद्रियां अपट अटक दूर और थोड़े के कोई प्रश्न नहीं है। हम तो यहाँ से देखेंगे वो आ रहा है यहाँ आएगा तो देखेंगे और दूसरा है। इस तरह से भगवान में न कपटता है न इंद्रियां उनकी शिथिल है न उनमें भ्रम प्रमाद हो सकता है इसलिए उनके बचने में भी